15वीं कारिका में जो पहले बात बताई गई है उसी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो वही कहते हैं ग्रंथ में एतदेव स्पष्ट यति, कि इसी बात को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। कौन सी बात वो थी? बात ये थी कि चाहे कृदंत हो चाहे तिंगंत हो, धातु से हमेशा असत्व अवस्था वाली क्रिया अर्थ निकलेगा, और जो घय प्रत्यय है उससे सिद्ध अवस्था वाला या सत्व अवस्था वाली क्रिया का अर्थ निकलेगा। अब यहाँ कारिका है 15वीं कारिका कि साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु रूप निबंधना, माने धातु का जो रूप है पच आदि का रूप उससे निबंधन, निबंधन का अर्थ करना है निमित्त कारण, तो धातु के रूप निबंधना माने धातु के कारण जो है साध्यत्वेन क्रिया प्रतीत होती है, माने साध्या क्रिया की प्रतीति होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धातु रूप निबंधन रहता है, माने धातु रूप निमित्त कारण रहता है। असिद्ध भावस्तु यस्तस्याः, और क्रिया का जो सिद्ध भाव है माने सिद्धा क्रिया जो है वह सौ घयादि निबंधन, वो घय आदि प्रत्ययों के निमित्त कारण से सिद्ध भाव उसका प्रतीत होता है, माने सिद्ध क्रिया की प्रतीति होती है, ऐसा 15वीं कारिका में बताया गया। इसका व्याख्यान आगे लिखते हैं, न च घयाधि सिद्धत्वेन अभिधाने माना भावा, ताकि घय आदि प्रत्ययों से सिद्ध क्रिया का अभिधान होता है, कथन होता है, उसमें माना भाव है इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकह इत्युक्ते, जब हम कहते हैं पाकह का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर क्रियांतर की आकांक्षा होती है, क्या कि पाकह भवती अथवा पाकह नष्टः, इस तरह से भवती क्रिया का अथवा नष्ट क्रिया की आकांक्षा का उत्थान होता है, और जहाँ अन्य क्रिया का की आकांक्षा होती है वहाँ पर सिद्ध क्रिया मानी जाती है, जहाँ अन्य क्रिया की आकांक्षा का उत्थान नहीं होता है वहाँ पर साध्य क्रिया मानी जाती है। तो पाकह जो घयंत शब्द है इसका उच्चारण करते ही आकांक्षा होती है मन में कि पाकह भवती अथवा पाकह नष्टः, तो यह जो आकांक्षा का उत्थापन है यही प्रमाण है कि घय प्रत्यय से सिद्ध क्रिया का अभिधान होता है। वही कहा कि पाकः इत्युक्ते भवति नष्टो वा इत्यादि आकांक्षा उत्थापनस्येव मानत्वात्, माने प्रमाणत्वात्। आगे फिर धातु उपस्थाप्यायाम तत् असंभवस्य उक्तत्वात्, और दोनों से क्रिया उपस्थित होती है, पच धातु से भी और घय प्रत्यय से भी, दोनों में लेकिन अंतर है, पच धातु से उपस्थित होने वाली क्रिया साध्या क्रिया है, घय प्रत्यय से उपस्थित होने वाली क्रिया सिद्धा क्रिया है, धातु से उपस्थाप्य जो है उसमें तत् असंभवस्य उक्तत्वात्, उसमें जो है इस तरह से क्रिया की आकांक्षा का उत्थान नहीं होता है, वह साध्या क्रिया ही होती है। आगे फिर कहते हैं स्तोकः पाकः इति अनापत्तेश्च, अगर ऐसा नहीं मानेंगे माने घय की तरह धातु से भी अगर सिद्ध क्रिया का ही जो है नहीं धातु की तरह घय से भी अगर आप साध्य क्रिया का ही अभिधान मानेंगे कथन मानेंगे तो स्तोकः पाकः यह भी प्रयोग होता है, यह प्रयोग नहीं हो पाएगा, इसकी अनापत्ति होगी, माने स्तोकः पाकः प्रयोग नहीं हो पाएगा। तात्पर्य ये है कि जब हम घय प्रत्यय से उपस्थाप्य क्रिया में अन्वय करते हैं तो स्तोक में पुल्लिंग होता है स्तोकः पाकः, और जब हम पच धातु से उपस्थाप्य क्रिया में अन्वय करते हैं स्तोक पदार्थ का तो वहाँ पर नपुंसक और द्वितीया विभक्ति होती है स्तोकम पाकः। तो यहाँ पर मैं तीन प्रयोग बोल रहा हूँ, स्तोकम पचति, स्तोकम पाकः और स्तोकः पाकः। जहाँ पर आप नपुंसक देखते हैं स्तोकम वहाँ पर द्वितीया का एक वचन अम विभक्ति समझना चाहिए, और वहाँ समझ लीजिए कि स्तोक पदार्थ का अन्वय जो है वो पच धातु से जो उपस्थापी क्रिया है साध्य क्रिया, उस साध्य क्रिया में उसका अन्वय होता है, और जहाँ पर स्तोकः पाकः स्तोकः में पुल्लिंग देखते हैं प्रथमा का एक वचन देखते हैं वहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर स्तोक पदार्थ का अन्वय जो है वो पच धातु उपस्थाप्य क्रिया में अन्वय नहीं हुआ है बल्कि घय प्रत्यय से जो उपस्थाप्य क्रिया है सिद्ध क्रिया उस सिद्ध क्रिया में अन्वय हुआ है, और सिद्ध क्रिया जो होती है वो लिंग संख्या से अन्वित होती है तो वहाँ पर पुल्लिंग और एक वचन प्रथमा का दिखाई पड़ता है। तो यह जो प्रयोग होता है स्तोकः पाकः, यह प्रयोग नहीं होगा यदि आप घय से साध्य क्रिया की प्रतीत मानेंगे, क्योंकि साध्य क्रिया की प्रतीत होने लगेगी तो स्तोकः पाकः नहीं हो करके स्तोकम पाकः हो जाएगा। तस्मात धात्वर्थ अन्वये स्तोकादि शब्देभ्यो द्वितीया, जो बात मैंने बस सिखाई थी वही कह रहे हैं कि धात्वर्थ जो है साध्या क्रिया उसमें अन्वय अन्वय करने पर स्तोकादि शब्द से द्वितीय विभक्ति आती है। घयर्थ अन्वय प्रथमा, और घय का जो अर्थ है सिद्ध क्रिया उसमें अन्वय करने पर प्रथमा विभक्ति आती है, जैसे स्तोकः पाकः और पुल्लिंगता च, और फिर पुल्लिंग लिंग भी उसमें रहता है। तत् सिद्धये घयादेह शक्ति उपेया, और इस तरह से प्रयोग की सिद्धि हो, माने स्तोकम पाकः भी बने स्तोकः पाकः भी बने, इस दोनों प्रयोगों की सिद्धि के लिए घय में जो है सिद्ध क्रिया की शक्ति का को मानना पड़ेगा, शक्ति मानना पड़ेगा, मतलब घय प्रत्यय जो है अभिधा शक्ति के द्वारा सिद्ध क्रिया अर्थ को बताएगा ही बताएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। एतेन घयादीनाम प्रयोग साधुता मात्रम इति नैयायिक नव्योक्तम अपास्तम, अभी जो हमने मत बोला है वह वैयाकरण का मत था, वैयाकरण के मत में घयादि प्रत्यय जो है उस प्रत्यय का भी अर्थ होता है सिद्ध क्रिया अर्थ होता है, लेकिन नव्य नैयायिक जो है वो घयादि प्रत्यय का कोई अर्थ मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये प्रयोग साधुता मात्रम, ये प्रयोग साधुता के लिए ही घयादि प्रत्यय किए जाते हैं। मत तात्पर्य यह है कि भावे सूत्र से जो भी प्रत्यय होता है उसको नव्य नैयायिक लोग प्रयोग साधुता मात्र मानते हैं, माने प्रयोग की साधुता, केवल धातु का प्रयोग होगा नहीं, प्रत्यय लगना जरूरी है, तो इसीलिए वहाँ पर भाव अर्थ में घयादि प्रत्यय लगा करके फिर उसको सिद्ध प्रयोग बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, ये कहना है नव्य नैयायिकों का। लेकिन वैयाकरणों का मानना है कि नहीं जी, चूंकि धातु पच पाकह में जैसे है पच धातु है और घय प्रत्यय है, तो पच में शक्ति मानेंगे किस क्रिया का, साध्या क्रिया का, और घय में शक्ति मानेंगे सिद्धा क्रिया का, तो घय का भी अपना अर्थ होता है सिद्धा क्रिया अर्थ होता है, ऐसा सिद्धांत मान लेने से नव्य नैयायिक लोग जो कहते थे कि घय आदि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वह केवल प्रयोग की साधुता कार्य के लिए होता है, वह अपास्तम, वह बात जो है खंडित हो गई, निरस्त हो गई। फिर आगे कहते हैं कि न च घयंत शक्ति उपस्थाप्यान भये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यम्। पहले ये प्रसंग आया था कि घयर्थ सिद्ध क्रिया मानना है और पचर्थ जो है पच धातु का अर्थ जो है साध्य क्रिया मानना है, धातु के अर्थ में अन्वय करेंगे तो स्तोकम बनेगा और घयर्थ सिद्ध क्रिया में अन्वय करेंगे तो स्तोकः बनेगा। ये जो बात आई थी इस बात को समाप्त करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा है, आप घय में शक्ति मत मानिए, अर्थात घय का अर्थ सिद्ध क्रिया मत मानिए, आप घयंत का अर्थ मानिए, घयंत मतलब पाकः, इसका अर्थ मानिए कि सिद्ध क्रिया होता है और साध्य क्रिया होता है, ये दोनों अर्थ मान लीजिए घयंत का, अकेले घय का अर्थ मत मानिए, और जब दोनों अर्थ मान लेंगे घयंत का तो क्या होगा, ये दो अर्थ हो गए साध्य क्रिया और सिद्ध क्रिया, किसका, पूरे पाकह का, केवल घय का नहीं केवल पच का नहीं, पूरे पाकह पूरा पाकह जो घयंत है उसके दो अर्थ मान लीजिए साध्य क्रिया और साधन क्रिया, और दो अर्थ मानने पर क्या होगा कि साध्य क्रिया में अन्वय करेंगे तो स्तोकम पाकह हो जाएगा और सिद्ध क्रिया में अन्वय करेंगे तो स्तोकः पाकह हो जाएगा, इस तरह से दोनों प्रयोगों की निष्पत्ति हो जाएगी। इस प्रयोग को करने के लिए जो आप घय प्रत्यय में शक्ति मानते थे सिद्ध क्रिया अर्थ बताने की शक्ति, वो मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो कहा पूर्व पक्षियों ने उसके लिए कहा न वाच्यम, इस तरह से आप घय में ही शक्ति आपको स्वीकार करनी चाहिए, घयंत में शक्ति मत स्वीकार करिए, इति न वाच्यम, ऐसा मत कहिए, क्यों, क्योंकि घयंत आनुपूर्वी आहा, क्योंकि घयंत जो पाक शब्द है इसकी जो आनुपूर्वी है, आनुपूर्वी मैंने पहले भी कभी बताया होगा, आनुपूर्वी कहते हैं कि ये स्पेलिंग जो होता है ना शब्द का स्पेलिंग, कि इस अक्षर ये अक्षर इस अक्षर के बाद ये अक्षर इस अक्षर के बाद ये अक्षर, इसी का नाम है आनुपूर्वी माने पूर्व में ये अक्षर उसके पूर्व में ये अक्षर उसके पूर्व में ये अक्षर, ये जो है इसी को आनुपूर्वी कहते हैं। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो क्रमिक वर्ण या वर्ण क्रम का नाम है आनुपूर्वी, तो घयंत जो पाक शब्द है इसकी जो आनुपूर्वी है वो चार वर्णों की आनुपूर्वी है, प आ क अ, ये जो चार वर्णों की घनयंत में आनुपूर्वी है इसमें अगर इसको अगर आप सक्तता बच्छेदक इसका मानते हैं अर्थात पाकत्व सक्त कौन होगा जिसमें शक्ति मानते हैं ना वो सक्त कहलाता है, तो हमने घयंत में शक्ति माना मान पूर्व पक्षियों ने, तो सक्त कौन होगा घयंत पूरा पाक, सक्तता किसमें रहेगी घयंत पाक शब्द में रहेगी, उसका अवच्छेदक कौन होगा तो पाक का जो आनुपूर्वी है माने चार जो वर्ण है वो उसके अवच्छेदक हो जाएंगे, तो कहा कि घयंत की आनुपूर्वी में सक्तता अवच्छेदकत्व तो अगर मानते हैं तो गौरवात, तो गौरव होता है, कैसे गौरव होगा कि ऐसे तो हम केवल घय को सक्त, घय को सक्त मानते हैं घय में शक्ति मानते हैं, ऐसे आपको पाक में शक्ति माननी पड़ेगी तो ज्यादा अक्षर होगा, घय में तीन ही अक्षर है घ और य, तो इस घयंत में इसलिए शक्ति मत मानिए क्योंकि गौरव होगा। अनुशासनाच घयादेह एव तथा शक्ति कल्पना, और पाणिनि का जो अनुशासन है वो क्लियर कट करता है कि भावे घय माने भाव में घय हो, तो घय की ही शक्ति बताई गई है अनुशासन के द्वारा भावे सूत्र के द्वारा, तो इस अनुशासन के आधार पर भी घयादि प्रत्यय की शक्ति की ही कल्पना करना जो है वो सही है, घयंत में शक्ति कल्पना करने में गौरव के अलावे और कोई लाभ नहीं है। इस तरह से क्या हो गया कि पचती तिंगंत स्थल जो है वहाँ पर पच धातु से साध्य क्रिया अर्थ निकलेगा, और जो कृदंत स्थल है पाकह इत्यादि उसमें सिद्ध क्रिया अर्थ निकलेगा, तो जो आपने दोष दिया था कि आपको भाष्य से विरोध होगा, भाष्य में कहा है कि भाष्य की पंक्ति थी ना कि द्रव्यवत प्रकाशते वाला क्रिया अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, हाँ ये जो था कि इस भाष्य से विरोध होगा, तो ये विरोध नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों को अलग कर लिया है, जहाँ पर ये रहेगा घयंत रहेगा वहाँ पर सिद्ध क्रिया अर्थ निकलेगा, जहाँ पर तिंगंत रहेगा वहाँ पर धातु से साध्य क्रिया अर्थ निकलेगा, वही कहा एवं च घय शक्ति अभिप्राय न कृदभिहित इति भाषम, कृदभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाश के, ये जो भाष्य है वो घय में शक्ति मान करके ही ये भाष्य कहा गया है, अतो न तद विरोध, और हमने जो कहा है वो धातु की शक्ति को मान करके कहा है, भाष्यकार ने कृत प्रत्यय की शक्ति को मान करके कहा है, तो विषय ही दोनों का अलग अलग है, अतो न तद विरोध, इसलिए हमारे में और भाष्यकार में कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह से आज का पाठ यही संपन्न करते हैं 15वीं कारिका में, फिर आगे हम 16वीं कारिका से पढ़ेंगे, और 21 कारिका तक जो है ये धात्वर्थ प्रकरण चलता है, मैंने आपको बताया था शुरू में ये धात्वर्थ प्रकरण बहुत ही अधिक है, क्योंकि ऑनलाइन हमें पढ़ाना है इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये संभव हो रहा है, अगर साक्षात क्लास में पढ़ते तो मैं पूरा ये प्रकरण नहीं पढ़ा पाता ये काल की मर्यादा के कारण, तो चलिए आज का पाठ यहीं रखते हैं।